الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں سنو کہانی میں. کس میں کہتے ہیں بھائی؟
سنو کہانی میں.
شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور حمزہ بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہمارے ساتھ پانچ بچے ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں, کہانی بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ, سیکھنے کو بھی ملے گا. پیارے بچوں سب سے پہلے آئیے آپ کو ایک اچھی بات بتاتا ہوں. کیا بتاتا ہوں؟
اچھی بات.
پیارے بچوں اچھی بات یہ ہے اور اچھی سے اچھی بات وہ یوں ہے کہ یہ حدیث پاک بھی ہے. اچھی بات بھی ہے کیونکہ حدیث پاک ہے اور وہ یہ ہے کہ نماز دین کا ستون ہے. نماز دین کا ستون ہے اور اسے آپ نے یاد بھی رکھنا ہے. اچھی بات بھی ہے, دوسروں کو بتانا بھی ہے. تو اسی طرح آئیے ہم شروع کرتے ہیں سنو کہانی کے سیگمنٹ میں کہانی کو. اور آج جو ہم کہانی سننے جا رہے ہیں پیارے بچوں وہ بڑی دلچسپ ہے اور حقیقت والی ایک کہانی, یعنی یہ فرضی نہیں ہے, حقیقی کہانی ہے, ایک واقعہ ہے اور بہت پرانے زمانے کا ہے. بہت
پرانے
زمانے کا. اس میں آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر بھی ہوگا. پیارے بچوں کیا آپ کو معلوم ہے, ڈو یو نو, کہ دنیا کا سب سے لمبا دریا کون سا ہے؟ دریا کہتے ہیں ریور کو. پیارے بچوں دنیا کا سب سے لمبا دریا دریائے نیل ہے. یہ کانٹیننٹ افریقہ میں واقع ہے, یعنی افریقہ میں ہے. واقع سے مراد ہوتا ہے وہاں ہونا, ٹھیک ہے. جب مصر کا بادشاہ فرعون تھا تو اس زمانے کی بات ہے کہ فرعون کا طریقہ تھا, یعنی کہ وہاں یہ عام سی بات تھی, طریقہ تھا کہ جب دریائے نیل میں پانی کم ہو جاتا نا, پانی کم ہو جاتا تو وہ مصر کے لوگوں کو حکم دیتا کہ وہ ایک اپنی نوجوان لڑکی کو تیار کریں, یعنی کہ اس کو سجائیں, زیورات پہنائیں اور اس کو دلہن کی طرح تیار کر کے وہ لوگ اس کو دریا میں ڈال دیتے. اس لڑکی کو دریا میں ڈال دیتے. اب وہ یہ حکم دیا کرتا تھا. تو پیارے بچوں اس زمانے کے جو لوگ تھے نا فرعون کے زمانے کے, کیونکہ فرعون مصر کا بادشاہ تھا, بادشاہ جو حکم دیتا ہے وہ اس کو پورا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو, تو لوگ ہر سال ایسا کرتے, یعنی ہر سال وہ کیا کرتے کہ اپنے ہی لوگوں میں سے ایک نوجوان لڑکی کو دلہن کی طرح سجاتے اور اس کو جو ہے پھر دریائے نیل میں ڈال دیتے. تو پیارے بچوں یہ جو وہاں کے لوگ تھے ان میں سے اکثر جاہل لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا تھا, عقیدہ کہتے ہیں بلیف کو, یقین کو, یہ یقین بن گیا تھا کہ دریائے نیل کے پانی کو اوپر تک بلند کرنے کے لیے دلہن کو سجا کر اور اچھے کپڑے پہنا کر اس دریا میں ڈالنا ہے, اس دریا میں, یعنی ان کا یہ ذہن بن گیا تھا. جب سے فرعون نے حکم دینا شروع کیا نا تو اب تو وہ ہر سال اس طرح کرتے کہ کیا کرتے کہ اگلا سال آتا دوبارہ ایک نوجوان لڑکی کو وہ دلہن کی طرح سجاتے, اچھے کپڑے پہناتے اور دریا نیل میں ڈال دیتے. یہ ان کا یقین بن گیا تھا کہ اب تو ہمیں ایسا کرنا ہی کرنا ہے, اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. اور یہ کیوں کرتے تھے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب دریا نیل کا پانی کم ہو جاتا تھا. پیارے بچوں یہ بات یاد رکھیں, ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے دریا نیل کا پانی کم ہو رہا ہے تو اس سے اس کا کیا تعلق ہے. دریائے نیل کا پانی یا کوئی بھی دریا ہو نا جب اس کا پانی کم ہو جاتا ہے تو وہاں کے لوگوں کو تشویش ہوتی ہے. تشویش کہتے ہیں کہ مشکلات ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کو چاہیے پانی اوپر تاکہ وہ اس کو یوز کر سکیں. اب کیسے یوز کریں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دریا کا پانی یوز کرنے کا کیا فائدہ. دریا کے بہت سارے بینیفٹس ہوتے ہیں, وہ بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر جو دریا کے آس پاس کنارے ہوتے ہیں نا وہاں پر اکثر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کھیتی باڑی. وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا گراس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, گراؤنڈ میں گراس اگی ہوئی ہے دریا کے کنارے. کیوں؟ وہاں پر پانی ہے, وہ آسانی سے پانی لے جاتے ہیں وہاں پر اور وہ پانی سے زمین کو سیراب کرتے ہیں. اسی طرح پینے کے لیے جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں وہ دریا کے پانی کو پینے کے لیے یوز کرتے ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کیونکہ پانی تو زندگی ہے. پانی کیا ہے؟ ہمارے پاس پانی نہ ہو ہم کیا کریں گے؟
پانی کے بغیر ہم پیاسے رہ جائیں گے.
پیاسے رہ جائیں گے. آپ نے سنا ہوگا دریا خشک ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ अब दरिया जब खुश्क हो गया तो उसका पानी तो यूज में नहीं आ सकता, उसका पानी यूज में नहीं आ सकता, इससे बहुत होता नुकसान। तभी बारिशें अल्लाह पाक की नेमत होती है, ठीक है, जो बारिश होती है अल्लाह पाक की रहमत है। तो प्यारे बच्चों, अब दरिया के पानी को ऊपर लाने के लिए, क्योंकि उनको चाहिए दरिया का पानी ऊपर, ज़्यादा पानी होगा तो हम ज़्यादा इसका यूज़ कर सकेंगे, तो वो क्या करते उस ज़माने में, हर साल एक नौजवान लड़की को दरिया में डालते। कौन से दरिया में? दरियाए नील में। ये आपने जहन में रखना है। और दरियाए नील ये कोई आम दरिया नहीं है, दरियाए नील एक तारीख़ इस्लाम का हिस्सा है। तो प्यारे बच्चों, ये तरीका, यानी जब फिरौन का जो हुक्म था कि एक नौजवान लड़की को दरिया नील में डालना है तो उसका पानी क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये तरीका चलता रहा चलता रहा चलता रहा, यहाँ तक के मिस्र पर इस्लामी हुकूमत आ गई। कौन सी हुकूमत आई?
इस्लामी
हुकूमत। और ये किन की हुकूमत थी? हुकूमत थी सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की। यानी जब दूसरे खलीफा, इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने, जब मिस्र में इस्लामी हुकूमत आई, तो उस वक्त हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मिस्र का गवर्नर अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु को बनाया। जब हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु को ये बात मालूम हुई कि ये सिलसिला यहाँ चलता हुआ आ रहा है, तो इन्होंने मिस्र वालों की इस बुरी आदत को बहुत नापसंद किया। अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत नापसंद किया कि अच्छा काम तो नहीं है, लड़की को जिंदा दरिया नील में डाल दिया, बहा दिया जाए। और क्या यकीन था उनका, बिलीव क्या था कि इसे पानी ऊपर आ जाएगा, और जब तक नहीं डालेंगे पानी ऊपर नहीं आएगा। ये बात हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु को पसंद नहीं आई। आगे क्या होता है प्यारे बच्चों, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु को ख़त लिखते हैं। कौन? अमर बिन आस। हज़रत अमर बिन आस ख़त लिखते हैं किन को? इस्लाम के खलीफा को, जो कि उस वक्त कौन थे? इस्लाम के खलीफा थे, दूसरे खलीफा। इस्लाम के दूसरे खलीफा कौन है? उमर फारूक आज़म। ये उनका दौरे खिलाफत चल रहा है ना, और उन्होंने अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु को गवर्नर बनाया है। कहाँ का? मिस्र का। अब ख़त लिखा और इसमें सारी सूरत हाल बयान की। सूरत हाल किसे कहते हैं? सूरत हाल कहते हैं प्यारे बच्चों कंडीशन, यानी कि जो उनके साथ हुआ, जो हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा मिस्र में, वो सब का सब हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु को ख़त में बयान कर दिया। अब हज़रत उमर फारूक आज़म पढ़ते हैं उस लेटर को, तो आप जो है इसके जवाब में ख़त लिखते हैं। आप हज़रत उमर फारूक आज़म ख़त लिखते हैं, लेटर लिखते हैं जवाब के लिए। और कैसे लिखते हैं आइए सुनते हैं, उस खत में क्या था। सुभान अल्लाह, खत में आप लिखते हैं कि अल्लाह ताला के बंदे उमर बिन खत्ताब की तरफ से मिस्र के दरियाए नील की तरफ। किसको लिख रहे हैं खत? दरिया को खत लिख रहे हैं। किसको खत लिख रहे हैं?
दरिया को।
दरिया को खत लिख रहे हैं। कौन लिख रहे हैं? हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो। तो प्यारे बच्चों, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो खत में लिखते हैं कि ए दरियाए नील, अगर तू अपनी मर्जी से जारी होता है तो मत जारी हो, अगर तू अपनी मर्जी से
जारी होता है तो मत जारी हो,
और अगर तू अल्लाह पाक के हुक्म से जारी होता है, और अगर तू अल्लाह पाक के
हुक्म
से जारी होता है, तो हम उसकी बारगाह में अर्ज करते हैं कि वो तुझे जारी फरमा दे। यानी अगर तू अल्लाह पाक के हुक्म से जारी होता है तो फिर हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि वो तुझे जारी फरमा दे, अगर तू अपनी मर्जी से जारी होता है तो जारी ना हो, हमें तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक के हुक्म से अगर जारी होता है तो हम उसकी बारगाह में अर्ज करेंगे, वो तुझे जारी फरमा देगा। ये आपने खत लिखा, लेटर लिखा, किसको?
दरिया
को लिख रहे हैं। ये बात है, किसको लिख रहे हैं?
दरिया
को। और कौन लिख रहे हैं? हजरत उमर।
दरिया को कैसे खत लिखेंगे? दरिया तो पढ़ ही नहीं सकता।
दरिया तो पढ़ ही नहीं सकता भाई, अब कौन जवाब देगा इसका? दरिया को खत कैसे लिख देंगे? आप लिखें शाह साहब दरिया को खत लिखें, शाह साहब डाल लेंगे, क्या फ़ायदा हो? कोई फायदा नहीं, पानी के साथ बह जाएगा दरिया को खत।
पानी
के साथ बह जाएगा खत, तो गीला हो जाएगा ना, वो तो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा ही है ना।
तो दरिया कैसे पड़ेगा?
ये मैं आपको बताता हूँ कि दरिया कैसे पड़ेगा। प्यारे बच्चों, लिखने वाले कौन थे?
हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह।
और ये हज़रत उमर फारूक कौन है? खलीफा है, मुसलमानों के खलीफा, सहाबी भी हैं, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा भी है, दीदार भी किया है, सोहबत भी पाई है। तो ये थी आपकी करामत। क्या थी?
करामत।
यानी आम बंदा अगर खत लिखे दरिया की तरफ तो दरिया तो वाकई में नहीं पढ़ेगा। हमजा भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दरिया कैसे पढ़ सकता है, दरिया तो नहीं पढ़ सकता। लेकिन ये खत उमर फारूक की करामत थी, इसमें दरिया का कोई कमाल नहीं था, कमाल किन का था? हजरत उमर फारूक आजम का। ये उनकी करामत थी कि उन्होंने दरिया की तरफ खत लिखा। आगे क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये आप सुने पहले, फिर आपको पता चलेगा। अब जब ये खत लिख दिया हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हों ने, हजरत सैयदना अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हों ने वो खत, वो लेटर दरियाए नील में डाल दिया। तो प्यारे बच्चों, अब मिस्र वालों ने यकीन कर लिया कि दरिया ठाटे मारने लगेगा। ठाटे मारने से मुराद ये कि दरिया का पानी ऊपर आ जाएगा और वो खूब अच्छी तरह से बहने लगेगा। तो ऐसा ही हुआ। कैसा हुआ? ऐसा ही हुआ। जब सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि एक ही रात में उसका पानी 16 गज यानी बहुत बुलंद हो गया। कितना गज बुलंद हो गया?
16
गज बुलंद हो गया। इसीलिए तो शेर है, चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। यानी सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खिदमतगार कौन? हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उनकी ये शान है कि वो दरियाए नील को ख़त लिखे हैं, तो दरियाए नील उनके ख़त की वजह से सिर्फ क्या हो जाए, जारी हो जाए और चलना शुरू कर दे, तो सरकार का आलम क्या होगा। ये हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की प्यारे बच्चे एक तरह से करामत भी है, और हमने इनका वाक़िया भी सुना, और अल्लाह पाक ने हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कितने सारे कमाल अता फ़रमाए। सबसे बड़ा कमाल तो ये आप सहाबी रसूल हैं, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी जो हैं, उनकी ख़ास सोहबत आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पाई और बहुत कुछ सीखा। और इस्लाम के कौन से खलीफ़ा हैं?
दूसरे।
अल्लाह पाक ने आपको इस्लाम का दूसरा खलीफा बनाए। पहले खलीफा कौन है?
हजरत
अबू बकर
सिद्दीक
रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दूसरे खलीफा कौन है?
हजरत उमर फारूक।
तीसरे खलीफा कौन है हमजा भाई? हजरत उस्मान
गनी
रज़ी अल्लाह तआला। और चौथे खलीफा कौन है?
हजरत मौला अली
रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो प्यारे बच्चों, और इसी वाक्य को आप देख लें कि इसमें कैसी हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामत है कि आपकी बरकतों की वजह से, आपकी ईमान की खूबसूरती की वजह से कि अल्लाह पाक ने मिस्र के मुसलमानों को इस बुरी आदत से निजात दिला दी। वो कितनी बुरी आदत में मुबतला थे कि लड़की को, जवान लड़की को दरिया में डाल देते। कैसे जाहिल लोग थे, बिल्कुल भी शोर नहीं था उनके अंदर कि एक लड़की को डालेंगे तो पानी ऊपर आएगा। लेकिन हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामत थी कि आपकी वजह से अल्लाह पाक ने उनकी इससे निजात अता फरमाई, और हज़रत सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों को हुक्म दिया कि अब वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, इसी की तारीफ करें, हमद करें और गुनाहों से सच्ची तौबा करें। और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके दरमियान जितने भी तमाम बुरे अफ़ाल थे और लड़की को फेंकने की जो आदत थी उनकी, इसको भी ख़त्म कर दिया। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी यही थी और वाकया इस तरह था, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हमने ज़िक्र खैर भी सुना। अल्लाह पाक हमें हर सहाबी से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। चले नारे लगाते हैं, ठीक है, नारे लगाएंगे, हर सहाबी ए नबी
जन्नती जन्नती,
सब सहाबियात भी
जन्नती जन्नती,
हजरत सिद्दीक भी
जन्नती जन्नती,
और उमर फारूक भी
जन्नती जन्नती,
उस्मान गनी
जन्नती जन्नती,
फातिमा और अली
जन्नती जन्नती,
है हसन हुसैन भी
जन्नती जन्नती,
हर ज़ौजाए नबी
जन्नती जन्नती,
वालिदैने नबी
जन्नती जन्नती,
हजरते मुआविया
जन्नती
जन्नती, और अबू सुफियान भी
जन्नती
जन्नती जन्नती जन्नती। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को, इस एपिसोड को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी तकरीबन 6 बजे जुमा और इतवार को। आप हमारा ये प्रोग्राम सुनो कहानी मदनी चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप दूसरे प्रोग्राम, पिछले एपिसोड हमारे देखना चाहते हैं सुनो कहानी के, तो YouTube पर किड्स मदनी चैनल के नाम से ऑफिशियल चैनल है, और वहाँ जाकर आप प्लेलिस्ट में सुनो कहानी के जितने भी एपिसोड हैं पिछले, वो आप देख सकते हैं। इसी तरह और भी किड्स मदनी चैनल के जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।
सुनो कहानी
सुनो कहानी
जल्दी 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 सुनो कहानी
सुनो कहानी।